लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं, ताकि हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु और उनके पवित्रतम हृदय के साथ व्यक्तिगत संबंध द्वारा सांत्वना मिले, जिससे हम विश्व के सब लोगों के प्रति करुणावान बनना सीखें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, गाजा में हिंसक टकराव शुरू होने के 600 दिन बीतने के बाद वहां मानवीय हालात अपने अंधकारमय पड़ाव पर है। निरंतर घातक बमबारी और जबरन सामूहिक विस्थापन के बीच फिलिस्तीनी परिवार भरपेट भोजन न मिल पाने का शिकार हैं और दैनिक गुजर बसर के लिए जरूरी सामान से वंचित भी। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ओचा ने कहा है कि गाजा पट्टी में इजरायली अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय राहत प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित कर रहे हैं। इस बाधा के जरिए गाजा में लोगों को मानवीय सहायता से वंचित रखा जा रहा है और लोग भोजन के अभाव में मौत के मुंह में ढकेले जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
ओचा के प्रवक्ता येंस लार्क ने जिनीवा में संवाददाताओं से कहा कि गाजा इस समय दुनिया का एकमात्र ऐसा परिभाषित क्षेत्र है जहां पूरी आबादी अकाल के खतरे में है।
गाजा इज द हंगरिएस्ट प्लेस ऑन अर्थ।
येंस लार्क कह रहे थे कि गाजा पृथ्वी पर भुखमरी से पीड़ित सबसे अधिक भीषण स्थान है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की खाद्य सहायता आपूर्ति पर बाधाओं के कारण ये सहायता अभियान दुनिया में हाल के इतिहास में सबसे अधिक बाधित सहायता अभियानों में से एक बनकर रह गया है। येंस लार्क ने जोर देकर कहा कि खाद्य सामग्री से भरे ट्रकों की सीमित संख्या को प्रवेश मिलने के कारण लोगों को बूंद बूंद के रूप में खाद्य सामग्री मिल रही है। उधर मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए विशेष दूत सिगरिड काग ने बुधवार को सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए इसराइली हमलों से त्रस्त गाजा के लोगों की व्यथा को कुछ इन शब्दों में बयान किया कि गाजा में परिवार अब अपने प्रियजन से विदा लेते हुए ये नहीं कहते कि जल्द ही फिर मुलाकात होगी, बल्कि ये कहते हैं कि अब स्वर्ग में मिलेंगे।
पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान कूटनैतिक मोर्चे पर ये आशा थी कि यूक्रेन में लड़ाई रुकने की दिशा पर प्रगति संभव है, मगर इसके बजाय देश भर में रूसी सैनिक बलों के बेरोक टोक हमलों ने एक क्रूर वास्तविकता को उजागर किया है। हिंसा में बड़ी संख्या में आम नागरिक हताहत हो रहे हैं और युद्ध से बदहाल यूक्रेन में मानव त्रासदी और गहरी हो रही है। रूसी इलाकों में भी यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हमलों में आम नागरिकों की मौत हो रही है। रूसी सैन्य बलों ने यूक्रेन युद्ध के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल के जरिए आम नागरिकों की हत्याओं को अंजाम दिया है, जो कि मानवता के विरुद्ध अपराध है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
राजनीतिक एवं शांति निर्माण मामलों के लिए यूएन अवर महासचिव रोजमैरी डिकालो ने सप्ताह सुरक्षा परिषद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सैन्य बलों के बेरोकटोक सिलसिलेवार हमलों ने युद्ध की क्रूर वास्तविकता को उजागर कर दिया है। हिंसा और हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम नागरिक हताहत हुए हैं और मानव त्रासदी गहरा रही है। पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में कीव, खार्किव, ओडेसा, खेरसों समेत अन्य यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन की सीमा से लगे रूसी क्षेत्रों पर भी हमले हुए हैं और आम नागरिक हताहत हो रहे हैं। अवर महासचिव ने सचेत किया है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की कीमत न केवल यूक्रेन के नागरिक चुका रहे हैं, बल्कि रूस में लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रोजमैरी डिकालो ने जोर देकर कहा कि शांति प्रक्रिया सरल नहीं होगी, इसमें समय लगेगा, लेकिन अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है। यूक्रेन की जनता अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती है।
हिमनद ग्लेशियर विश्व के 75% ताजा पानी का भंडार है। मगर मानवता के लिए ये बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघल रहे हैं और इनकी रक्षा के लिए त्वरित वैश्विक कार्यवाही आवश्यक है। तजिकिस्तान के प्रधानमंत्री कोखिर रसूलजोदा ने यह बात चेतावनी के अंदाज में दुशानबे हिमनद संरक्षण सम्मेलन में कही। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
विश्व मौसम संगठन की चेतावनी है कि हिमनदों के पिघलने से न सिर्फ पर्यावरण बल्कि मानव जीवन और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। 2 अरब से अधिक लोग पर्वतीय जल संसाधनों पर निर्भर हैं, जो आज खतरे में हैं। उनकी जल आवश्यकताएं, खेती और बिजली इसी पर निर्भर है। विश्व हिमनद निगरानी सेवा के अनुसार पिछले वर्ष हिमनदों में रिकॉर्ड स्तर पर बर्फ की हानि हुई है। 1975 में अब तक ग्लेशियरों ने 9000 अरब टन से अधिक बर्फ खोई है, जिससे जल संकट के साथ साथ भूस्खलन और आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है। वैश्विक सहयोग और त्वरित कार्यवाही से इस खतरे को रोका जा सकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां ताजा पानी और सुरक्षित जीवन पा सकें। बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर दुशानबे में हो रहे सम्मेलन में पिघलते हिमनदों के संरक्षण के लिए नए संकल्पों और रणनीतियों को तैयार किया जाएगा। साथ ही ग्लेशियर के पिघलने, टूटने और खिसकने को रोकने के लिए नए उपायों, नीति व कार्यवाही को बढ़ावा दिया जाएगा।
बबल गम से लेकर रुई की मिठाई, बचपन में आकर्षित करने वाले ये स्वाद अब युवाओं को तंबाकू की खतरनाक लत की ओर ढकेल रहे हैं। चमकदार पैकेजिंग, मोहक स्वाद और सोशल मीडिया मार्केटिंग के शोर में इन तंबाकू उत्पादों से सेहत को होने वाले नुकसान से बेपरवाह एक पूरी पीढ़ी इनके जाल में फंसती जा रही है। इसके मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपने नए अध्ययन में चेतावनी जारी करते हुए देशों की सरकारों से आग्रह किया है कि बिना देरी किए तंबाकू और निकोटीन उत्पादों में सभी प्रकार के जायकों का इस्तेमाल बंद करना होगा। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
ई सिगरेट, हुक्कों, सिगार, बिना धुएं वाले तंबाकू जैसे इन कई उत्पादों में चॉकलेट, शहद, मेंथॉल, अंगूर, चेरी समेत अन्य स्वादों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी संख्या 16,000 तक है। ये सचमुच चौंकाने वाली बात है। ये स्वाद ही स्वास्थ्य के लिए खराब इन तंबाकू उत्पादों को युवाओं की पसंद बना रहा है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 13 से 15 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 3,70,00,000 बच्चे तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। कई देशों में ई सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले किशोरों और युवाओं की संख्या तो वयस्कों से भी अधिक है। और ध्यान रहे कि तंबाकू सेवन की वजह से हर साल 80,00,000 से अधिक लोगों की मौत होती है। WHO ने इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर देशों की सरकारों से आग्रह किया है कि बिना देरी किए तंबाकू और निकोटीन उत्पादों में सभी प्रकार के स्वादों का इस्तेमाल बंद करना होगा।
आलू जैसा और शायद कुछ भी नहीं, जो अब चाहे सब्जी में हो, पराठे में भरा हो या फ्रेंच फ्राई, आलू हर थाली में हर जगह बना ही रहता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आलू सिर्फ स्वाद का हिस्सा नहीं, बल्कि ये दुनिया भर की स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और खेती की रीढ़ भी है। समोसे और पकौड़ियों में जगह बनाने वाला आलू आखिर दुनिया भर में क्यों मशहूर है? आलू की इस उपयोगिता की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस घोषित किया। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार। वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तरेला से निजी मुलाकात की। उनके साथ उनके बच्चे और कई पोते पोतियां भी थे। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि संत पापा लियो 14वें ने प्रेरितिक भवन में इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तरेला से मुलाकात की। संत पापा से लगभग एक घंटे की मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ने राज्य सचिवालय में कार्डिनल पियत्रो पारोलिन और राज्यों के साथ संबंधों के अवर सचिव मिरोस्लाव से भी मुलाकात की। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य सचिवालय में आयोजित सौहार्दपूर्ण वार्ता के दौरान मौजूदा अच्छे द्विपक्षीय संबंधों के लिए प्रशंसा व्यक्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें यूक्रेन और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों पर विशेष ध्यान दिया गया। और संत पापा लियो 14वें ने शुक्रवार को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में लोक संगठनों और करिश्माई आंदोलनों के नेताओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी यात्रा के केंद्र में हमेशा प्रभु येसु को रखें। उन्होंने कहा, यह आवश्यक बात है कि करिश्मा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और परम धर्म पीठ द्वारा मान्यता प्राप्त या स्थापित कलीसियाई संघों के करीब 200 प्रतिनिधियों को संबोधित किया, जो रोम में लोकधर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक बैठक के लिए आए हुए हैं। अपने संबोधन में संत पापा लियो ने संस्थागत समूहों के बीच अंतर किया, जिनकी स्थापना कुछ सामान्य प्रेरितिक धर्मार्थ और धार्मिक परियोजना को आगे बढ़ाने या विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था में क्रिस्तीय गवाह का समर्थन करने के लिए की गई थी, और एक करिश्माई प्रेरणा के साथ उत्पन्न होने वाले समूहों जिसने आध्यात्मिकता और सुसमाचार प्रचार के नए रूप को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि संस्थागत और करिश्माई दोनों नींवों को अनुग्रह के संबंध में समझा जाना चाहिए। संस्था इसलिए मौजूद है ताकि अनुग्रह हमेशा दिया जा सके, और करिश्मा इसलिए दिया जाता है ताकि यह अनुग्रह प्राप्त हो सके और फल दे सके। कलीसिया की शिक्षा का पालन करते हुए और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय को उद्धृत करते हुए संत पापा लियो ने कहा कि पदानुक्रमिक उपहार और करिश्माई उपहार दोनों येसु द्वारा स्थापित कलीसिया के दिव्य संविधान के लिए सह आवश्यक हैं। संत पापा लियो ने फिर अपना ध्यान एकता और मिशन के विचार पर केंद्रित किया। कलीसिया के जीवन के दो आवश्यक पहलू और संत पेत्रुस की प्रेरिताई की दो प्राथमिकताएं, इस सामंजस्य के कारण संत पापा ने सभी कलीसियाई संघों और आंदोलनों से कहा कि वे संत पापा के साथ ईमानदारी और उदारता से सहयोग करें, खासकर इन दोनों क्षेत्रों में। संत पापा ने उनसे एकता का खमीर बनने का आह्वान किया, जो पूरी कलीसिया में उनके अपने संगठनों में अनुभव की गई एकता को बढ़ावा दे। फिर मिशन के अपने अनुभव को याद करते हुए संत पापा ने उन्हें हमेशा मिशनरी उत्साह को जीवित रखने के लिए आमंत्रित किया, जो उनकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को चिन्हित करता है और उन्हें अपनी प्रतिभाओं को कलीसिया के मिशन की सेवा में लगाने के लिए कहा। और शुक्रवार को वाटिकन के कंसिस्ट्री भवन में संत पापा लियो 14वें ने तीन धर्म समाजों, अफ्रीकी मिशनों के धर्म समाज, संत फ्रांसिस के तीसरे ऑर्डर रेगुलर धर्म समाज और पाराक्लीट के सेवकों के धर्म समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। अपने संबोधन में संत पापा ने उनके धर्म समाज के सदस्यों के लिए प्रार्थना की, उन्हें मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने के लिए चिंतन और प्रेरितिक प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। संत पापा ने कहा कि तीनों धर्म समाज कलीसिया के इतिहास के अलग अलग युगों में शुरू हुई थी, और प्रत्येक धर्म समाज मसीह के रहस्यमय शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं का जवाब देती है। सबसे पहले संत फ्रांसिस के तीसरे आदेश के 113वें महासभा के प्रतिभागियों की ओर मुड़ते हुए संत पापा लियो ने कहा कि प्रतिनिधि जिन विषयों पर बात कर रहे हैं, वे ईश्वर के संपूर्ण लोगों, विशेष रूप से सामुदायिक जीवन, प्रशिक्षण और बुलाहटों से संबंधित है। उन्होंने उन्हें अपने पश्चातापी करिश्मे के प्रकाश में तीन तत्वों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनकी अपनी जड़ें असीसी के संत फ्रांसिस के समय से है। संत पापा ने कहा, यह हमें याद दिलाता है कि जैसा कि संत फ्रांसिस ने स्वयं कहा था, केवल हृदय परिवर्तन की निरंतर यात्रा के माध्यम से ही हम अपने भाइयों और बहनों को हमारे प्रभु येसु मसीह के सुगंधित शब्द दे सकते हैं। संत पापा लियो ने फिर 1856 में ईश सेवक धर्माध्यक्ष मेल्कियोर डी मेरियन ब्रेसिलैक द्वारा अफ्रीकी मिशनों के धर्म समाज की स्थापना को याद किया, जो अपनी महासभा आयोजित कर रहा है। उन्होंने उनके करिश्मे की मिशनरी भावना को रेखांकित किया, जिसके प्रति वे अपने पूरे इतिहास में वफादार रहे हैं। संत पापा ने कहा, मिशन के प्रति निष्ठा ने आपको समय के साथ अनगिनत आंतरिक और बाहरी चुनौतियों पर काबू पाने में सक्षम बनाया है। इसने आपको बढ़ने दिया है। वास्तव में अफ्रीका और उससे आगे नए प्रेरितिक क्षितिज पर चलने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रेरणा और अवसर प्राप्त करने का। अपने संस्थापक के शब्दों को याद करते हुए संत पापा ने क्रूस की मूर्खता को अपनाने और खुद को सभी सांसारिक उलझनों से मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे मसीह से भर जाएं। उधर वाटिकन और क्यूबा के बीच राजनयिक संबंधों की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर हवाना के महागिरजाघर में आयोजित पवित्र मिसा समारोह के दौरान राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर ने संत पापा लियो 14वें के दृष्टिकोण के आलोक में कलीसिया के मिशन को याद किया। अपने प्रवचन में महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने कलीसिया के मिशनरी कार्य और वाटिकन कूटनीति दोनों के आधारभूत सिद्धांतों के रूप में शांति, न्याय और सत्य पर प्रकाश डाला। उधर पुरोहितों की जयंती के अवसर पर फ्रांस स्थित पेरिस प्रांत के धर्माध्यक्षों और पुरोहितों को गुरुवार को संत पापा लियो 14वें का एक संदेश मिला, जिसे नोटरडेम महागिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह के दौरान क्रेतेइल के धर्माध्यक्ष डोमिनिक ब्लैचेट ने पढ़ा। संत पापा ने अपने संदेश में कहा, मुझे अपने पितृत्व स्नेह को व्यक्त करने और ईश्वर के लोगों की सेवा में आपकी प्रेरिताई को जारी रखने के लिए आपका हार्दिक प्रोत्साहन देने में खुशी हो रही है। संत पापा ने उन्हें अपने जीवन और प्रेरिताई को येसु के प्रेम में आधारित करने के लिए आमंत्रित किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।